फिर इसी तरह आप देखिए सूरत वाकया की आयत 3 में क्या आता है, खाफिदतुर राफिया, पस्त करने वाली, बुलंद करने वाली। ये क्या है? अल्लाह की हस्ती, क़यामत के लिए ये नाम है। क़यामत के दोनों नाम है, खाफिजतुन और राफियतुन। कैसे दुनिया में बड़े बनने वाले जो दन दनाते फिरते हैं, अल्लाह सुबहान तआला उनको कैसे नीचा करेगा। और इसके बरक्स आप देख लीजिए कि जो दुनिया में नीचे थे, कमज़ोर थे, बिलाल जैसे लोग, अल्लाह सुबहान तआला उनको कैसे वहाँ इज्जतें देगा। इसी तरह सूरत 3 की आयत 3 में फरमाया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इसकी हालत पस से पस कर दी। यानी इंसान को इज्जत देकर दुनिया में भेजता है, लेकिन कितने ही लोग हैं कि जिनको इज्जत रास नहीं आती और वो शिर्क करके अल्लाह ताला के साथ मद्दे मुकाबिल खड़े करके पीछे से पीछे अपने आप को कर लेते हैं। और सूरत हज की आयत 51 में आता है, और जो लोग हमारी निशानियों को पस्त करने के दर पे रहते हैं वही दोस्ती हैं। यानी क्या पता चला कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ तो जो मामला करते हैं वो तो अल्लाह ताला के साथ भी ऐसा करते हैं। आज देखिए यहाँ एक हल्की सी बात ज़हन में रखिए, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना, अल्लाह की किताब का मजाक करना, उसको जलाना, उसको फ्लश में डालना, उसके साथ अजीबोगरीब मामले करने, और अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर के कार्टून हो या उसके साथ कोई ऐसा मामला करे, ऐसे सब लोगों को डर जाना चाहिए कि अल-खाफिज़ुन जो है वो कैसे आपको जलील कर सकता है। मदीना में एक शख्स था, अजान की आवाज़ उसको बड़ी चिढ़ थी। जब अजान में लफ्ज़ आता कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो हसद के मारे और जो दिल में उसके नबी सल्लम के लिए बुग़्ज़ था उसकी वजह से क्या कहता, झूठा जलकर राख हुआ, नऊज़ुबिल्लाह। यानी अपने ज़ोम में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा था। एक रात उसकी जो खिदमतगार थी वो चिराग बंद करना भूल गई और रात को हवा चली और अपनी जो कोठरी थी उसमें आग लगी और वो खुद जल के राख हो गया। तो ये है अल-खाफिज़ुन, अपने दुश्मनों को गिराने वाला, नबी के मुखालिफिन, नबी से बुग़्ज़ रखने वालों को पीछे करने वाला अल-खाफिज़ुन है। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला को पीछे ना समझिए। आप देखिए कि अल्लाह ताला अल-खाफिज़ कैसे है, अपने और दीन के दुश्मनों को हमेशा नाकाम करता है। नमरूद को शिकस्त देने के लिए उसको कोई ऊँट और हाथी नहीं भेजने पड़े, छोटे से मच्छर ने नमरूद का नाक में दम कर दिया। फिरौन को डुबोने के लिए अल्लाह ताला को आसमान या ज़मीन से पानी नहीं चाहिए, एक दरियाए नील का पानी थोड़ा सा उसके लिए काफ़ी हो गया, वो उसी में डूब डूब के गोते खा के ऊपर नीचे होता रहा। वो जो डुबकियाँ थी ना वो अल-खाफिज़ की तरफ से थी। और आप देखिए अबू जहल हो या अबू लहब हो, उनकी इबरतनाक मौतें क्या बताती हैं कि अल-खाफिज़ अपने दुश्मनों को नीचा करता है, उनको नीचा करना उसको आता है। सूरत तौहा की आयत 78 में अल्लाह ताला फिरौन के डूबने का जो मंजर पेश करते हैं उसको ज़रा सा इमेजिनेशन के साथ सोचिए, फत बाहुम फिरौन बि जुनूदी ही फ़गशियहुम मिनल यम्मी मा गशियहुम, बस फिरौन ने अपने लश्करों के साथ इनका पीछा किया तो इन्हें समंदर से इस चीज़ ने ढांप लिया जिसने इनको ढांप लिया था। अब आप देखिए सूरत तौहा की आयत 78 क्या बताती है कि अल-खाफिज़ को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, वो कैसे लोगों को नीस्त नाबूद करता है। एक तरफ वो फिरौन जो कहता है ना रब्बुकुम अल-आला, और दूसरी तरफ जब समंदर की मौजों में डुबकियां ले रहा था तो क्या हुआ, जलील हो रहा था। तो कहिए कि अल-खाफिज़ जलील करने वाला, और कुछ लोग होते हैं इस काबिल। और लफ्ज़ जलील असल में उर्दू में अच्छा नहीं समझते ना, अरबी जुबान में लफ्ज़ ज़ुल्ला या ज़ाल लाम लफ नरम होने को कहते हैं। याद कीजिए अगर आपको वाक्य याद है गाय का, ला जलूल, गाय खेती को या ज़मीन को हमवार ना करती हो यानी काम ना करती हो, तो वहाँ ज़मीन की कैफियत आई थी नरमी के नाते से। तो ज़ाहिर है कि जब कोई नरम होता है तो वो एक किस्म का मुहावरतन मानी ये हो जाता है कि वो पस्त हो गया। जब ये नाम सुनते हैं तो बाज़वा कुछ लोग बड़े पीस मेकर बनते हैं, कहते हैं नहीं ना ऐसी भी तो कोई बात नहीं, कुछ तो ऐसा ही होता है। तो सवाल लिखिए कि अल-हाफिज़ किसी को जलील क्यों करता है, क्या ज़रूरत है? खुश रहो, पीस पीस पीस, लोगों को अच्छा कहिए, बुरा ना कहिए, ऐसा है वैसा है। तो पहली बात देखिए, शिर्क सबसे बड़ी ज़िल्लत, सबसे बड़ी वजह जो किसी को कोई मिलती है दी जाती है वो शिर्क है। अल्लाह ताला इस दुनिया में शिर्क करने वाले को इतना नीचे कर देगा कि वो सारी दुनिया से कमज़ोर होगा, डरपोक भी होगा, वहमी भी होगा, और इसी तरह से उसका अंदर इतना काला और स्याह और इतना खाली खोखला होता है कि डिप्रेशन में होगा। फिर इस तरह आप देखिए कि पहली कौमों को अम्बिया की नाफरमानी और कत्ल की वजह से अल्लाह ताला ने नीचा किया। आप सूरत अल अराफ में अम्बिया कराम के किस्से देख लीजिए, हज़रत नूह की कौम से लेकर कौम शुएब और इस तरह से बनी इसराइल तक के किस्से मौजूद हैं, कैसे अल्लाह ताला ने फिर उन लोगों को नीस्तो नाबूद कर दिया। फिर इसी तरह से इंसान के तकबर और गुरूर की वजह से भी नीचे कर देता है। तो ना कभी किब्र कीजिए, ना कभी तकबर कीजिए, बड़ा ना समझिए अपने आप को। और सूरत मुजादला की आयत 5 नोट कीजिएगा, इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहू कुबितु कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़द अनज़लना आयातिम बय्यिनातिम वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे वो लोग जलील किए गए जो इनसे पहले थे, और बिलाशुबा हमने वाज़ेह आयात नाजिल की हैं और कुफार के लिए जलील करने वाला अजाब है। आप देखिए जो लफ्ज़ कुबी तो है ना, पता नहीं मेरे लाशौर में लफ्ज़ कुबी तो के साथ कुबड़ा लफ्ज़ आता है। जब भी मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना कुबी तो वैसे कहते भी इसी को है, तो हमारे कल्चर में होता है ना कुबड़ा, ऐसे झुक के चलने वाला, यानी फिजिकली यू कैन फील इट, कुबी तू कमा कुबी तल्लजीना, यानी जब पीछे से गर्दन से पकड़ के किसी को जोर से धक्का दिया जाए ना, वो कैफियत समझ में आती है। अल्लाह ताला को हक है। देखिए जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर इस मुल्क में जहाँ आप हैं, मैसे मैं नॉर्वे में हूँ, तो कोई नॉर्वे के लॉ को चैलेंज करे, नॉर्वे की हुकूमत को बुरा करे, यहाँ के किंग के कार्टून बनाए, वो एक और को किंग का एक शरीक बना के पेश करे, तो हुकूमतें क्या करती हैं इस पर? ये बगावत से बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ऐसे बंदे को तो किसी काल कोठरी में काले पानियों की सजा दी जाती है। तो क्या हम अल्लाह के दीन के मामलों में ही इतने गैर संजीदा अपने आप को और दूसरे को साबित करें? इसी तरह से आप देखिए कि अलखाफिस का एक और एंगल देखिए, बेनसीब करने वाला। लोगों का नसीब बिगड़ जाता है जब वो अल्लाह ताला के साथ टक्कर लेते हैं, यानी अल्लाह उनके नसीब को खोटा कैसे करता है। पहली बात आप देखिए कि जो बंदा तकब्बुर का शिकार होगा, खुद को बड़ा समझेगा, हक को छोटा समझेगा, बतर अलहक की वगैमतिन नास, अल्लाह ऐसे बंदे का नसीब खोटा कर देगा। फिर अल्लाह की हदों को तोड़ना। अब आज आप जिस मुल्क में, आप कहते हैं मैं तो ट्रैफिक लॉज की कोई केयर नहीं करूंगी, क्या ये मेरे लिए कि मैं सीट बेल्ट पहनूं और मैं क्यों 60 पे रुकूं, मैं तो 80 90 पे जाऊंगा? तो ऐसा शख्स फिर वो जेल में जाएगा, या उसको फिर कोई टोकन देना पड़ेगा, या उसको कोई कोई ना कोई उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर सरा जो लोग दूसरों के हकूक नहीं देते, ऐसे लोग बदबख्त हो जाते हैं। अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। अपनी ज़िंदगी में ये बात लिख लीजिए, अल्लाह से ज़्यादा अदल और इंसाफ वाला कोई नहीं है। बस आप देखिए कि बनी इसराइल कैसे अल्लाह सुबहान तआला ने उनको मौका दिया, फिर हज़रत मूसा जैसा अपना प्यारा लाडला कलीमुल्ला नबी भेजा, लेकिन उन्होंने एक ना मानी। तो अल्लाह ने आले फिरौन को किस तरह पकड़ा? सूरत अल अराफ की आयत 130 है, वलक़द अख़ज़ना आले फिरौन बिस्सिनीन व नक़्सिन मिनस समराती लअल्लहुम यज़्ज़करून। और बिलाशुबा यकीनन हमने फिरौन की आल को कहत सालियों और फलों की कमी के साथ पकड़ा ताकि वो नसीहत पकड़े। अब आप देखिए कि ये जो 9 किस्म के अजाब थे ना, जिसमें आप देखिए कि कभी फलों में कमी, कभी उनको खून में डुबो दिया जाता, मेंढक उनके घुसते, कभी तसव्वुर में लाइए तो क्या हालात होंगे। बात करने के लिए मुंह खोलते उसमें मेंढक, पानी पीने के लिए ग्लास में डाला तो खून का बन गया, जुएं सुसरियां फसलों में पड़ गई, घर में सुसरियां, बिस्तरों में सुसरियां। ये कितना खाफिस ने अपने वजूद के साथ और अपनी इन सजाओं के साथ उनको दिखाया कि तुम मेरे गजब गुस्से से डर जाओ। आज भी देखिए कैसी ह्यूमिलिएशन वाली सजाएं हैं। आज भी इंसानियत अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला आप हाफिज हैं, हम नीचे हो गए, आप हमें माफ करें। कल भी कोई इसी तरह से बातचीत हो रही थी कि ऐसे लगता है दुनिया को देखकर कि ट्रेन बहुत तेज़ चल रही थी और किसी ने एकदम वो जंजीर खींच दी। जो पाकिस्तान की ट्रेन्स हैं, आप लोग उसको इमेजिनेशन में ले आएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो इमरजेंसी में वो जंजीर खींचे तो ड्राइवर को पता चल जाता है ना। यानी दुनिया बड़ा उड़ रही थी, टेक्नोलॉजी का बड़ा मान था, अपने आप को कैसे बड़ा समझते थे, अल्लाह ने ऐसे लगता है कि दुखती रग पे पांव रख लिया। समझ ही नहीं आ रही, ये हो गया, वो हुआ, अब दूसरा जर्म आ गया, अब सेकंड वेव आ गई, अब थर्ड वेव आ रही, अब कोरोना से बढ़कर कोई और वायरस आ गया, अब कोई तीसरा आ रहा है। हम ज़ाहरी असबाब को जानते हैं, हम किसी चीज़ का इनकार नहीं करते कि ये नहीं हो रहा, हमें इस पे एक लफ्ज़ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, ना टाइम है ना फुर्सत है, लेकिन ये तो आप मानने को तैयार है ना कि दुनिया एकदम दबी ज़रूर है, भीगी बिल्लियाँ तो बन गए, मौत का डर है, खौफ है, नहीं है, मास्क मुंह पे डाल दिए, 2 मीटर का फासला, अब किधर गए वो नाइट क्लब्स और किधर गया वो सारा शराब खाना और जिना खाना। अब चाहे बीमारियों के डर से रुके, कौम के खौफ से डरे, हुकूमत की सजाओं से डरे, लेकिन एक पॉज तो आया, आज के दौर लिखे अलखाफिस के वजूद का एहसास दिलाते हैं। अब तो अनप्रिडिक्टेबल हो गए, बड़ी बात करता है बंदा, मैं हाँ हाँ ये कर लेंगे, अब नहीं पता आप कर सकते हैं कि नहीं। यकीन करें कि इस पिछले साल को मैं अपनी ज़िंदगी के पिछले 10 साल कम अज़ कम देखूँ ना, तो मुझे तो ऐसे वाकई महसूस होता है कि जैसे बीच में एक पॉज नहीं आता, दिन रात एक था अल्लाह की रहमत से, जिसमें ट्रैवलिंग भी बेशुमार हुई। मैं अपना पासपोर्ट देखूँ तो जब भी कभी इमिग्रेशन में पेश किया तो वो एक दफ़ा तो ज़रूर ही देख के कहता है टू मैनी पेजेस, टू मैनी स्टैम्प्स। लेकिन एक जुनून था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज खुले हैं रास्ते तो कभी भी ना बैठे एक जगह, जहाँ ज़रूरत है जब जहाँ जा के वापस आ जाए, जहाँ भी जाना है। यानी ज़िंदगी में स्टेगनेंटनेस तो देखी नहीं। पिछले 10 साल कह लें, जब से यूरोप की तरफ मुंह हुआ, फिर यूरोप के 5 साल, और उसके बाद जब से 2018 से बीच में पाकिस्तान आ गया, यकीन करें फिरकी की तरह सफ़र किया हमने। कभी मेरा बैग खाली नहीं हुआ था, मैं मेरे हैंड कैरीज ऐसे ही होते थे, और हम लोग एक वीकेंड पे इधर हैं। आपको बताने का मकसद क्या है कि चले अच्छे काम के लिए भी जाते थे और ट्रैवलिंग भी, और फिर वापस आना, और कमिटमेंट और रिस्क थे। अब इस पूरे साल पिछले में आप देख लीजिए कि बस एक लिमिटेड एक्सेस के साथ सफ़र हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह काम दिन रात चल रहा है, वो चाहे ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा हो गया, दूसरे फारिग तो नहीं हुए। ज़िंदगी में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कई दफ़ा आपको नीचे आना पड़ता है, आप हक पे होते हैं लेकिन आपको बातिल पे साबित करते हैं लोग, ताने देते, इल्ज़ाम देते, झगड़े होते, ये आपके ऊपर ससुराल का कोई प्रेशर है, कभी शौहर ज्यादती कर जाते, कभी बीवियां शौहरों पे ज्यादती कर जाती, कभी नंदे बात सुना गई, कभी देवरानियां सुना गई, कभी सास का मौका बन गया, कभी बहू चर्ब जुबान हो गई। अलखाफिस ऐ मेरे मालिक, मेरी नजरें तेरे ऊपर है, और फिर कभी भी आपका बाल भी का नहीं होगा। और एक और चीज देखिए अलखाफिस की, इसको सुनते वक्त आपके दिल पर चोट पड़नी चाहिए। अलखाफिस नाम का एक एंगल देखिए, अपने कुर्ब से दूर करने वाला। अल्लाह पहले तो दुआ करिए कि हमें कभी अपने कुर्ब से दूर ना करे, हमारे पल्ले में है ही क्या उसके कुर्ब के सिवा, क्योंकि जिसको रब अपने से दूर कर दे उसके पास पीछे क्या रह गया उसके पल्ले में। तो अलखाफिस वो है जो कुछ लोगों को अपने कुर्ब से दूर कर देता है, और वो कौन लोग होते हैं जो वाकई उससे दूर होने के काबिल होते हैं। सूरह तौबा की आयत 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जाअल कलिमतल्लज़ीना कफरु सुफ्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इसने काफिरों की बात पस्त कर दी, और बुलंद व बरतर, यानी बुलंद और अजीज़ तो अल्लाह ताला का ही कलमा है, अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। तो क्या पता चला कि अल खाफिस कुफर के कलमे को नीचे कर देता है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे ज़रिए अपने कलमे को बुलंद कर ले। हमारे राफे के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे आप देखेंगे। तो आज दुआ करें कि अल्लाह हमारे ज़रिए से कुफर, शिर्क, बातिल, बिदात और नफ्स परस्ती और जिस्म परस्ती और न जाने क्या कुछ बातिल खुदा बनाए बैठे हैं, ये सब को अल्लाह नीचे करके और हमें इसका मौका दे कि हम हर वो चीज़ पीछे कर दें जो अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ है। इसी तरह अलखाफिस का एक और एंगल देख लें, लोगों को इनके मुकाम से गिराने वाला। अल्लाह अकबर, क्यों गिराता है, सवाल लिखिए, मुकाम से क्यों गिराता है अल्लाह कुछ लोगों को। नंबर एक, अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से, फिर रसूलों की इताअत ना करने की वजह से, शायर अल्लाह का मजाक उड़ाने की वजह से, दीन पर अमल ना करने की वजह से। अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे लोग थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे, कि जिन्होंने वाकई नबियों का जब मजाक उड़ाया तो अल्लाह ने क्या किया। सूरह तौबा की आयत 70 ले लें, अलम यातिहिम नबाउल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौमी नूहिम व आदिम व समूद व क़ौमी इब्राहिम व क़ौमी इब्राहिम व असहाबी मदयन वल्मुतफ़िकाति अतत्हुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फ़मा कानल्लाहु लियाज़लिमहुम ولكن كانوا انفسهم يظلمون. کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی بھی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا تو نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. تو جسم پرست، ہومو سیکشوئلز، قوم لوط اور اصحاب مدین دیکھیے، قوم نوح دیکھیے، ہر قوم کا نام اللہ کی جب پکڑ آئی الحافظ نے ان کو تلپٹ کر دیا. آج بھی آپ دیکھیے ڈیڈ سی، یا آپ کہہ لیجئے کہ بحر مردار کہتے ہیں، کون تھا الحافظ تھا، کیسے زمین کے اندر دھس گئی تھیں یہ بستیاں. تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ نیچے کرتا ہے. ابھی پچھلے مہینے ناروے میں ہمارے اس علاقے سے تقریباً 15-20 منٹ دور ہے صرف جگہ کہ جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور کتنے گھر ہیں، 60-70 گھر پورے کے پورے زمین میں چلے گئے. تو الحافظ وہ ہے جو زمین پہ موجود گھروں کو زمین بوس کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ وہ بستی جو اللہ کو پسند ہے وہ اپنا لیجئے. اب اس نام کے اوپر عمل کی باتوں میں چند باتیں لے لیجئے کہ الحافظ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑے جھکے ہوں. کس کے سامنے؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت 24. اور رحم دلی سے ان کے لیے توازو کا بازو پس رکھے رکھنا اور کہو کہ میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا. تو نوٹ کیجئے، ماں باپ کے سامنے پست بنی ہے. آپ ایم پی اے بن جائیں، ایم این اے بن جائیں، صدر، وزیر، مشیر بن جائیں، آپ پوری دنیا کے دارالافتاء کمپنی کے کمیٹی کے بڑے بن جائیں، لیکن اللہ آپ سے جو چاہتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے پست ہو جائیں، ان کے آگے جھکے ہوئے رہیں. اور اسی طرح سے کس کو پست کرتا ہے اللہ چاہتا ہے؟ آوازوں کو پست کیجئے. سورۃ لقمان کی آیت 19، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کیجئے اور اپنی آواز پست کر کے، یقیناً آوازوں میں بدترین آواز گدوں کی آواز ہے. تو اپنی آوازوں کو دیکھیے، اپنی ٹون کو دیکھیے، بولنے کو دیکھیے، چلانے کا انداز تو نہیں، چیخنے کا، چنگھاڑنے کا انداز تو نہیں ہے، اور اس کو دبائیے. اور خاص طور پہ پھر سورہ حجرات کی بھی آیتیں شروع میں نوٹ کریں کہ اپنے نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کریں. الحافظ چاہتا ہے کہ جہاں نبی کی بات آ جائے ہم نہ بولیں، جہاں حدیث آ جائے کسی قول کو نہ مانیں اس کے مقابلے پہ. اور اگر قرآن پاک کی آیات میں دیکھیے کہ کیا یہ الحافظ ہے، تو نام تو نہیں ہے لیکن مفہوم کی آیات موجود ہیں الحافظ کے، یعنی اللہ نے اپنی خوبیاں دی. جیسے سورہ واقعہ میں تھے حافظت الرافیہ، تو ظاہر ہے جو کام ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ الحافظ ہے جو عزت دیتا ہے. جب آپ جھک جاتے ہیں نا تو الحافظ پھر آپ کو جھکنے تھوڑی دیتا ہے. جیسے گردن کٹنے لگی تھی تو حافظ نے کٹوانے تھوڑی دی تھی. سورۃ حج کی آیت 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جب اللہ عزت دے نا ساری دنیا نیچا کرے. لکھیے ایک اور خوبصورت اینگل، الحافظ وہ ذات ہے کہ جس نے یوسف کو کنویں میں سے نکال کر بلندیاں دی، بھائیوں نے کنویں کی پستیوں میں ڈالا، الحافظ نے نیچے ہونے نہیں دیا. اور یاد رکھیے کہ الحافظ وہ ہستی ہے جو کچھ ایسے لوگوں کو جو واقعی ڈیزرو کریں گے جہنم کی پستیوں میں ڈال دے گا. سورۃ غافر کی آیت 60 میں آتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہ جو لفظ ہے نا داخرین، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو زندگی میں کوئی کام ایسا نہ آپ سے مجھ سے ہو جائے کہ جہنم کے گہرائیوں میں، اندھیروں میں گرنا پڑے کیونکہ ہم نے تکبر کیا. پھر اس طرح یاد رکھیے کہ الحافظ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. عزت بھی اسی سے ملے گی اور ذلت سے بچنا ہے تو اسی سے کہنا ہے. ہمیں کیسے؟ بڑی پیاری دعا ہے آل عمران 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. कह दीजिए कि अल्लाह बादशाही के मालिक तू जिसे चाहे बादशाही देता है और जिससे चाहे बादशाही छीन लेता है और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। तेरे ही हाथ में हर भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। ये दुआ मांगा करें और कहा करें, अल्लाह जिल्लत से बचा, अल्लाह पस्तियों से बचा, अल्लाह इखलाक की पस्तियों से बचा, किरदार की पस्ती से बचा। आप कहते हैं ना बैड करेक्टर, लूज करेक्टर, तो हर चीज़ में पस्तियों से बचना है। सिर्फ अपने माँ बाप और अपने उस्तादों के आगे आजिज़ होकर रहना है। फिर आप देखिए कि अगर इस नाम को हदीस में उससे भी कहीं देखना चाहें तो इसका असर कहाँ दिखता है। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2176 और इसको हाईलाइट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके दिल में खुद ब खुद इस काम को करने की बेहतरीन रग़बत पैदा होगी कि मैंने अकड़ नहीं दिखानी। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी के सर में कद्र व मंजिलत जो फरिश्ते के हाथ में होती है पाई जाती है। जब बंदा आजजी इख्तियार करता है तो फरिश्ते से कहा जाता है किसकी कद्र व मंजिलत को बुलंद कर दे। अल्लाह अकबर, यानी फरिश्तों के जरिए अल्लाह ये काम करवाता है, इज्जत देने का या जिल्लत का। और जब बंदा तकब्बुर करता है तो फरिश्ते को कहा जाता है इसकी कद्र व मंजिलत को पस्त कर दे। कुछ अकड़ कर चीख के रोब डाल के बड़के मार के बड़े बनते हैं ना जी, तुम्हें पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। अल हाफिज़ कहते हैं मुझे सब पता है। और इसी तरह से आप देखिए कि अल हाफिज़ क़यामत के दिन रसवाई देने वाला भी है। अबू सईद खुदरी की रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों में शोहरत व नामवरी के लिए कोई काम करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको जलील और रुस्वा करेगा, और जिसने रियाकारी की तो अल्लाह ताला भी इसको लोगों के सामने जलील और रुस्वा कर दिखाएगा। तो कहिए क़यामत के दिन की रुस्वाई से ए हाफिज हमें बचा ले। ये इब्ने माजा की रिवायत थी 4206। फिर इसी तरह आप देखिए अल हाफिज़ ने एक बात कह दी, क्या, कि जो दुनिया का हरीस होगा ना उसका मुकद्दर फ़कीरी और मुख्ताजी है। यानी जो दुनिया दुनिया करेगा ना राल टपकेगी। ये अल हस वाली कैफियत, वही जो ऊपर आयत गुजरी उसमें आता है ना, कुत्ते की तरह राल टपकती है, ज़ुबान लटकती है। ऐसे बंदे को अल्लाह फिर क्या करता है, सुन के इबरत पकड़ने वाली रिवायत है। सिलसिला सहीहा की रिवायत 2286। ज़ैद बिन साबित रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का रंजो गम दुनिया ही दुनिया हो, अल्लाह ताला इस पर इसके मामलात को मुंतशिर कर देता है। यानी काम ही बिखरे हुए, एक सही तो दूसरा खराब, इधर फायदा तो उधर नुकसान, इधर ठीक तो उधर गलत। इसकी फकीरी और मुख्ताजी को इसकी आंखों के दरमियान रख देता है, और इसे दुनिया से भी वही कुछ मिलता है जो इसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। लेकिन इसके बरक्स जिस आदमी की फिक्र आखिरत हो, दुआ कीजिए अल्लाह इनमें कर दे, अल्लाह ताला इसके उमूर की शेरवाज़ाबंदी करता है। यानी इसके कामों को ऑर्गेनाइज कर देता है, इसके काम बड़े आराम से होने लगते हैं, इसके दिल को गनी कर देता है, और दुनिया जलील होकर इसके मुकद्दर के मुताबिक इसके पास पहुंच जाती है। तो क्या पता चला कि जब अल्लाह ताला दुनिया में किसी को खोया देखता है तो उसको जलील करता है। और आप देखिए लोग खप रहे हैं, कोई कहता है हाय मेरे शौहर को कमाने का बड़ा शौक है, खर्च नहीं करना, बच्चे नहीं चाहिए, क्यों, कि मैं जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता, तुम खुद अपना कमाओ, फिर मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाता क्योंकि माल चाहिए, तो आखिर में किसको दे जाएंगे। तो याद रखिए ये है बंदे का जलील और रुस्वा हो जाना। फिर इसी तरह से अलखाफिज दूसरों के ऐब चुनने वालों को सजा देता है। अबू दाऊद की रिवायत है 4880। अबू बरजा असलमी रावी हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो लोगों जो ईमान लाए हो अपनी ज़ुबान से, और हाल ये है कि ईमान इसके दिल में दाखिल नहीं। यानी ज़ुबान से तो ईमान लाते हो लेकिन दिलों में ईमान कोई नहीं। मुसलमानों की गीबत ना करो और इनके ऐबों के पीछे ना पड़ो, इसलिए कि जो इनके अयूब के पीछे पड़ेगा अल्लाह इसके ऐबों के पीछे पड़ेगा, और अल्लाह जिसके ऐब के पीछे पड़ेगा इसे इसी के घर में जलील और रुस्वा कर देगा। कभी बदनामी हो तो इस हदीस को ज़रूर याद रखिए, अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, बहुत मौके देख कर फिर छोड़ के पकड़ता है। इसी तरह आखिर में फिर चंद दुआएं और अज़कार जो अलहाफिज़ से मुतल्लिक हैं। हसन बिन अली से रिवायत है कि मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद कलेमात सिखाए जिनको मैं वितर के कनूत में पढ़ा करूं। चलिए दुआए कनूत याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा अहदिनी फी मन हदईत वाफिनी फी मन आफईत वतवल्लनी फी मन तवल्लैत वबारिक ली फी मा आतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت يَئِزُّ مَنْ عَدَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. اے اللہ مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت بخشی ہے، اور میری سرپرستی کر ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی کی ہے، اور مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے زمرے میں جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے مقدر کی ہے، اور میرے لیے اس چیز میں برکت دے جو تو نے عطا کی. بس جو تو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اور جس سے تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. اے ہمارے رب، تو پاک ببرکت اور بلند ہے. ابن ماجہ کی روایت 1178. تو اس کو یاد کیجئے جب دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دل میں یہ ساری باتیں ہوں گی کہ جب اللہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلت دے نہیں سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ الحافظ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ جب کسی دوسرے کو پریشانی میں مبتلا دیکھیں تو کیا کہیں. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت عطا فرمائی جس میں تجھے مبتلا فرمایا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت دی. تو یہ تکلیف انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی جو کچھ اگلے کو ہوئی. اسی طرح ایک بڑی پیاری دعا ہے، موقع دیکھ کر یاد کر لیجئے گا، دیکھ کے پڑھتے رہے، زوال نعمت سے پناہ مانگنے کی دعا. یعنی الحافظ وہ ہے جو آپ کی نعمتوں کے زوال سے بھی بچاتا ہے. دعا کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے چھن جانے سے، اور تیری عافیت کے پھر جانے سے، اور تیرے ناگہانی عذاب سے، اور تیرے ہر طرح کے غصے سے. صحیح مسلم کی روایت ہے جلد 2 پیج 352، اور ابو داؤد جلد 1 پیج 223. تو یہ دعائیں اچھی ہیں، اللہ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اور ایک دعا تو آپ سب کو آتی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آمین. یہ دعائیں سہارا ہے مومن کا. اور تہجد کے وقت پڑھا جانے والا آخری رکوع آل عمران 194، اس کی ایک دعا، ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ دعا انشاءاللہ قیامت کے دن کی پستیوں سے بچائیں گی. اور الموعظات الحسنہ کیا ہے؟ کہ الحافظ کے غیظ و غضب سے پناہ مانگتے رہیں، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں. اے اللہ، ہمارے عمل، ہماری نمازیں قیامت کے دن ہمارے منہ پہ نہ مارنا. ہر عمل خالص اللہ کے لیے کیجئے، نعمتوں کے چھن جانے سے بچنے کی دعائیں کریں، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں، اور اللہ کے اس خاص نام کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں. اسی طرح اپنی کوششوں کا رخ ہمیشہ سیدھا رکھیں، کبھی 420 نہ کریں، قول و فعل کا تضاد نہ رکھیں، سیدھے سیدھے چلیں، قول قولاً سدیدہ. اور دوسروں کی تنگی دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر الحافظ سے کبھی مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب سے بھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الحافظ. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.